संबंध। अब आगे के 71वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं।
विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति।
जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्मम निरहंकार और निस्पृह होकर विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या।
विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह।
अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निस्पृह होना है। निस्पृह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान यह सर्वान पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्ममः, स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकार, यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं, और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहंता यानी मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। स शांति मधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना स्पृहा ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना स्पृहा ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना स्पृहा ममता और अहंता इन चारों में अहंता ही मुख्य है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन
ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है। इसलिए संसार से संबंध छोड़ने में सबसे पहले कामना का त्याग कर दिया जाए तो अन्य तीन का त्याग करना सुगम हो जाता है। कामना करने से कोई वस्तु नहीं मिलती, वस्तु तो जो मिलने वाली है वही मिलेगी, अतः कामना का त्याग कर देना चाहिए। कामना का त्याग करने के बाद भी स्पृहा रहती है। स्पृहा यानी शरीर निर्वाह की आवश्यकता पूरी हो जाए यह भी हमारे हाथ की बात नहीं है, अर्थात स्पृहा की पूर्ति में भी हम स्वतंत्र नहीं है। जो होना है वह तो होगा ही, फिर स्पृहा रखने से क्या लाभ। अतः शरीर के लिए अन्न, जल, वस्त्र आदि की आशा छोड़ने से स्पृहा छूट जाती है।
कामना और स्पृहा को छोड़ने के बाद भी प्राप्त वस्तु शरीर आदि में ममता रहती है। ममता रखने से वस्तु आदि सुरक्षित रहती हो यह भी कोई नियम नहीं है, और ममता न रहने से वस्तु आदि नष्ट हो जाती हो यह भी कोई नियम नहीं है। अतः प्राप्त वस्तु में ममता रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तात्पर्य है कि कामना और स्पृहा का त्याग करने के बाद, ममता का त्याग और इन तीनों का त्याग करने के बाद अहंता का त्याग सुगम हो जाता है, परंतु कामना, स्पृहा और ममता का त्याग करने से पहले ही अहंता का त्याग करने में कठिनता होती है। अतः साधक पहले क्रमशः कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा।
अहंता ममता से रहित होने का उपाय। कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है, इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आप से आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूं, इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता का यानी होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं सत्ता है। यह हूं वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूं, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा, है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है, अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है।